ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए।
सरकार ने कैंसर की दवा पर सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल संसद में आम बजट में कैंसर की 3 अतिरिक्त दवाइयों पर सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया। इन दवाओं में स्तन कैंसर के लिए ट्रेस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, फेफड़ों के कैंसर के लिए ओसीमर्टिनिब और पित्त तथा फेफड़ों के कैंसर के लिए ड्यूरोवेलुमैब है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में 27 लाख मरीजों को इससे लाभ होगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि वित्त मंत्री ने एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर सीमा शुल्क को भी संशोधित किया है। इन संशोधित दरों से कम लागत पर एक्सरे मशीन उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों को धन आवंटन में कथित भेदभाव को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने आज संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार की मांग की। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ अन्याय किया गया है और वे इसके खिलाफ संसद के बाहर और अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज नीट यूजी परीक्षा और बजट 2024-25 पर सवाल उठाने के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि नीट परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया गया, लेकिन विपक्षी दल देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिलते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। बजट पर विपक्षी दलों की टिप्पणियों पर श्री प्रसाद ने कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ग के लिए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को बजट को पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नीट मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और इसे सत्य की जीत बताया है। न्यायालय के फैसले पर श्री प्रधान ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार पारदर्शी, हेराफेरी मुक्त और शून्य त्रुटि वाली परीक्षा प्रणाली के प्रति वचनबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा 2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही देशभर में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य प्रश्न पत्र के लीक होने का संकेत नहीं देते हैं और उनसे 5 मई को आयोजित परीक्षा की वैधता पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज भारत पहुंच गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जायसवाल ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समग्र कूटनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी। श्री लैमी मुख्य रूप से व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी सुदृढ़ करने और लंबे समय से बकाया भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत करेंगे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली उच्च स्तरीय वार्ता होगी। श्री लैमी विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल के काठमांडू में आज त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक निजी एयरलाइन कंपनी का विमान उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पोखरा जा रहे सौर्या एयरलाइंस के विमान में विमान चालक दल सहित कम से कम 19 लोग सवार थे, जो सुबह करीब 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। अमरीका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद सुरक्षा चूक जांच का सामना कर रही अमरीकी सीक्रेट सर्विस की निदेशक किम्बरली चीटल ने इस्तीफा दे दिया है। चीटल ने अपने कर्मचारियों को ईमेल द्वारा सूचित किया कि वे सीक्रेट सर्विस की निदेशक का पद छोड़ रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण और गोवा तथा महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गंगा के मैदानी भागों में भी अगले 2 दिन में बारिश बढ़ने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन में सामान्य वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।